Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
कहीं पर भी लगाव नहीं है, क्योंकि वो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त का यही अर्थ है कि जीवन में होते हुए मुक्त, उसी को जीवन मुक्त बोलते हैं। ज्ञान हुआ और उस ज्ञान से समूल वासना समाप्त हो गया, आसक्ति कहीं पर भी नहीं है। अब वो जीवन मुक्त है, कहीं पर भी वासना ही नहीं। अब वो मरने से डरेगा कि नहीं? ये सूत्र है। वासना ही हमारे जीवन में मृत्यु का भय पैदा करती है। वासना ही शरीर के शरीर और शरीर संबंधी पदार्थों से अलग होना नहीं चाहती है, और मृत्यु हमको इन सब से अलग कर देती है। इसलिए महात्मा ना मरने से कभी डरता नहीं, ज्ञानी कभी मरने से नहीं डरता। जो विरक्त महापुरुष है ना, वैराग्यशील, वो भी मरने से कभी नहीं डरता, क्योंकि उसकी वर्तमान में, वर्तमान जीवन में, वर्तमान जीवन संबंधी पदार्थों में कहीं आसक्ति नहीं है। आप समझ गए ना? मरने का भय, ये मरने का भय मरने का नहीं, ये दुनिया छूटने का भय है। ये आसक्ति छूटने का भय, आसक्ति के पदार्थों से दूर होने का भय है। और बालक नचिकेता के जीवन में मृत्यु का भय नहीं है। उसका कारण है उनके जीवन में वैराग्य है, उनके जीवन में कहीं पर भी अटैचमेंट नहीं, और सत्य उनके जीवन में, कर्तव्य बोध उनके जीवन में, पितृभक्ति उनके जीवन में। और आपको एक बात बताऊं, जहां शास्त्र के प्रति आस्था हो, अपने माता पिता के प्रति अगाध निष्ठा हो, प्रेम हो, कर्तव्य बुद्धि हो, वहां पर भी आदमी अपने जीवन के प्रति आसक्ति नहीं रखता है। जैसे आप शहीद होते हैं ना लोग राष्ट्र के लिए, तो वहां अपने राष्ट्र के प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए व्यक्ति मृत्यु का भी आलिंगन कर लेता है, मृत्यु को भी स्वीकार कर लेता है। आज बालक नचिकेता का जीवन साधक का जीवन, अभी ज्ञान नहीं हुआ है, अभी तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं हुआ, अभी जीवन मुक्ति नहीं है, लेकिन परम साधक है। साधक के सारे लक्षण पिता की आज्ञा को मानना है, पिता के वचन को पूर्ण करना है। उन्होंने कहा मृत्वे त्वाम ददामीति, और यही कारण है कि आज वे मृत्यु को ढूंढ रहे हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। मरने से तो हम डरते हैं, और यहां तक कि किसी ने बोला कि आप मर जाओ तो आपको बुरा क्यों लगता है? आपको लगता है इसकी बात सही ना हो जाए, ये वाणी लग न जाए कि सचमुच मर न जाए? हम इतना डरते हैं। लेकिन बालक नचिकेता उस पिता के वचन को स्वीकार कर वहां पहुंच गए, आचार्य यम के पास। अब आप सोचना कि वो कैसे गए होंगे। ये संकल्प शक्ति है हमारे में। यदि संकल्प में बल हो तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ये सत्य का बल है। हम जब सत्य का पालन करते हैं ना, तो वो सत्य हमारे जीवन में हमारी शक्ति बनकर प्रकट होता है। और हम अपने संकल्प को तोड़ते हैं। मैं आपको जैसे उदाहरण बताऊं, आप किसी महापुरुष के लिए या अपने किसी आदमी के लिए बोलते हैं हम 4 बजे आएंगे, और आप 4 बजे जाते कि आप 10 बजे जाते हैं? आप बोलते 4 बजे और पहुंचते 6 बजे, तो आपने अपना संकल्प स्वयं तोड़ दिया ना। आपने कहा कि मैं आऊंगा और आप नहीं गए, संकल्प टूटा। और हम अनेकों बार ऐसे छोटे बड़े संकल्पों को तोड़ते जाते और आदत बन जाती, फिर संकल्प टूटने की आदत बन जाती। पर हम कोई भी संकल्प करते हैं ना, टूटता ही जाता है फिर, क्योंकि हम ही हमारे संकल्पों को तोड़ते जाते। और संकल्प यदि मजबूत करना हो तो छोटे छोटे संकल्पों से शुरू करें और वो पूरे करते जाए, तो आपके संकल्प में शक्ति आएगी। और संकल्प में शक्ति आने के बाद इच्छा का अनुगमन फिर पदार्थ करता है। अभी हम पदार्थ का अनुगमन कर इच्छा को व्यक्त करते हैं, हम अर्थ का अनुगमन करके पद का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हमारे संकल्प में शक्ति आ जाती है तो फिर पद का अर्थ अनुगमन करने लगता है, हमारे संकल्प का अनुगमन अर्थ करने लगता है। जैसे हम अभी बोलते हैं माइक हैं और है वही माइक हम बोलते हैं, माने माइक इस पदार्थ का अनुगमन हमारी वाणी कर रहे हैं। लेकिन ज्ञानी यदि बोल दे माइक, तो वहां पर माइक प्रकट हो जाए, ये अर्थ की शक्ति। ईश्वर संकल्प करता है और संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन है। वहां प्रहलाद ने बोला क्या, उन्होंने पूछा हिरण्यकश्यपु ने तुम्हारा श्रीहरि कहां है, उन्होंने कहा नहीं है सर्वत्र है। उन्होंने पूछा इसमें इस खम्भे में, बोले हाँ इसमें, बोले हाँ इसमें है। आप ध्यान देना, आप वहां नहीं होने के बाद भी वहां होना होगा, क्योंकि किसने बोला है वो भक्त प्रहलाद ने बोला है। आप वहां नहीं होने के बाद भी होना ही होगा। उन्होंने खम्भे में, अरे बोले खम्भे में भी है। आप खम्भे में कल्पना करेंगे आप, अब आप तो मान लेते हैं क्योंकि वहां भगवान प्रकट हुए, प्रहलाद के पहले कभी खंभे में प्रकट हुए थे क्या? आज आपको मानना सरल है, आप मान सकते हैं खंभे में भी हैं। अरे भाई खंभे में है तो दीवार में भी हैं, खंभे में है तो कहीं पर भी हैं। अब आपके लिए उदाहरण है, समझने के लिए उदाहरण है, विश्वास के लिए उदाहरण है भक्त प्रहलाद का। लेकिन प्रहलाद के लिए क्या उदाहरण था? आज इतना अट्टू विश्वास, उनकी अनुभूति है, भगवान खंभे में भी हैं। और जब खंभे में भी हैं, इसीलिए भगवान खंभे से प्रकट हुए हैं। उनको उन्होंने तो बोला था भैया खंभे में भी हैं, बाहर भीतर सब जगह पर हैं। लेकिन विश्वास नहीं था हिरण्यकश्यपु को, हिरण्यकश्यपु को भरोसा ही नहीं था। वो सोच रहा था होगा भी तो क्या खंभे में होगा क्या, क्योंकि खंभे के अंदर होने की कोई संभावना है? अरे वो बड़ा भारी महल रहा होगा और वो खंभा भी कोई सामान्य रहा होगा, हाँ उस महल का बहुत बड़ा खंभा। और वो विश्वास था हिरण्यकश्यपु का कि मैं इसकी वाणी को झूठी साबित करूंगा, हाँ मैं दिखा दूंगा कि तुम कहते हो इस खंभे में भी है, और मैं तुमको दिखा दूंगा कि इसके अंदर वो नहीं है, कैसा हटी रहा होगा। और उन्हें मारा एक भूखा, और वो बड़ा ताकतवर हिरण्यकश्यपु, हाँ खंभा टूटा। अब भगवान ने दिखा दिया भैया मैं रहूं कि न रहूं, लेकिन मेरे भक्तों ने बोला है कि खंभे में भी है, आप मुझे खंभे में भी होना होगा, होना होगा। बोला किसने? भगवान वहां प्रकट हो गए। समझ गए ना, ये संकल्प शक्ति है, ये भक्ति की शक्ति है, जहां बोल दे और उस बोलने का अनुकरण अर्थ करने लग जाए। आज बालक नचिकेता सोचते कि मेरे पिता ने बोला है मृत्युवे त्वाम ददामी, आप मुझे मृत्यु के पास तो जाना ही होगा क्योंकि मेरे पिता के वचन है। एक तो पिता के वचन की शक्ति, और दूसरी आज बालक नचिकेता में भी वो शक्ति है। बालक नचिकेता पहुंच गए, कैसे पहुंचे होंगे? अब आप उसका विचार ज्यादा मत करना, मर के ही पहुंच गए हैं वो, मर गए हो, शरीर छोड़ दिया। क्योंकि आगे के प्रकरणों को जब आप देखते हैं ना, तो पिताजी शोक मग्न थे और उन्होंने वचन जब मांगे तो उसमें ये भी मांगा था माम आभिवदेत, जब मैं वापस लौट जाऊं तो वो ये न समझे कि मैं कोई अलग हूं, वही बेटा है मेरा, ऐसा वो समझे। मरने के बाद जिंदा हो गया, मरने के बाद पहुंच गया, वो आपको आगे बताएंगे अगले प्रकरण में। जैसे बालक नचिकेता वहां पहुंचे और वहां मृत्युलोक में जाने के बाद मालूम पड़ा कि आचार्य यम वहां नहीं है, आश्चर्य की बात। आज ये मृत्यु को ढूंढ रहे हैं और इनको मृत्यु नहीं मिल रही है। आदमी मृत्यु से बचता है, और कितना भी आप बचेंगे मृत्यु से, लेकिन आप बच पाएंगे? आप कहीं पर भी, आप कितना भी अपने आप को छिपा ले, कैसे भी कर ले, मंत्र विज्ञान आदि का आश्रय ले, थोड़ा आप टाल लेंगे, थोड़ा लंबी खींच लेंगे, आज की मृत्यु कल पर, आप महामृत्युंजय मंत्र आप जपते हैं किस लिए? भैया थोड़ा लंबा खींचने के लिए, आज की अपेक्षा थोड़ा कल चली जाएगी मृत्यु। लेकिन मृत्यु से कौन बचेगा। कितना भी आप भयभीत हो, आप मृत्यु से नहीं बच सकते। और आज बालक नचिकेता मृत्यु को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मृत्यु का समय ही नहीं आया है और मृत्यु नहीं मिल रही है। मालूम पड़ा कि यमराज कहीं बाहर गए हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है, माने यमराज भी कहीं दौरे पर जाते होंगे, मतलब इधर उधर। और ये जो यम है ना, आप डरते हैं ना, यम से डरना मत। ये यम ब्रह्मज्ञानी यम है। इंद्र सुनते हैं, बहुत सारे इंद्र हुए ब्रह्मज्ञानी। ये जो यम है ये ब्रह्मज्ञानी है, इसलिए यम को भगवान का रूप माना गया है। भगवान, यहां यम को भगवान भी शब्द का प्रयोग किया है। वहां बालक नचिकेता गए और वहां के लोगों ने पूछा, भैया कहां से आए तुम? उन्होंने कहा कि मैं नचिकेता नामोहम, मैं नचिकेता नाम का, और मेरे पिता ने यहां भेज दिया है, यमलोक भेज दिया है, और यम का कोई काम होगा और यहां मैं सेवा में आया हूं। वहां एक अद्भुत घटना घटी। आप ध्यान दें कि इसको सुनना, ये जो उपनिषदें हैं और जो आपकी कथाएं कहानियां, बड़ी मजेदार कथा कहानियां हैं, और इसमें हर मोड़ पर आपको कोई ना कोई संदेश मिलता है, आपको उपदेश मिलता है। जब बालक नचिकेता वहां गए तो आचार्य यम और वो यम लोग, जहां वो स्वयं बोल रहे थे आपको क्या चाहिए, वृणीश्व पुत्र पौत्रान वृणीश्व, उन्होंने कहा कि भूमि का साम्राज्य मांगो, तुमको क्या चाहिए, रथ घोड़े हाथी सब कुछ है, इतना ऐश्वर्य वहां यमलोक में। और वहां जब बालक नचिकेता गए, लोगों ने कहा भैया अतिथि हैं, सत्कार करो। बोले आओ खाओ पियो, नाच गाना सब कुछ था वहां, लेकिन बालक नचिकेता ने उसका कोई उपयोग किया है क्या? क्यों नहीं किया होगा? देखो ये संयम है, अश्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयतेन्द्रिय। आपके भीतर यदि श्रद्धा है तो वो श्रद्धा तत्परता में व्यक्त होती है, वो इंद्रिय संयम के रूप में व्यक्त होती है। यदि हमारे में श्रद्धा है तो वो तत्परता बनेगी। तत्परता माने कार्य, तत्परता माने आपकी श्रद्धा क्रिया में व्यक्त होगी। आपके अंदर श्रद्धा है तो आप मंदिर में चले गए, ये तत्परता है। मंदिर में जाना ये तत्परता है। आप जप करने के लिए बैठ गए, आप भागे भागे आके सत्संग में बैठ गए, आप भागे भागे गुरु के चरणों में आके बैठ गए, ये आपकी तत्परता है। तत्परत्व माने वो क्रिया की अभिव्यक्ति, क्रिया श्रद्धा की अभिव्यक्ति क्रिया में आई। और जहां श्रद्धा होती ना वहां इंद्रिय संयम होता है। श्रद्धा के अभाव में इंद्रिय संयम संभव नहीं है। आज बालक नचिकेता में वो सारी चीजें विद्यमान है। श्रद्धा अविवेशा, आपने सुना कि नहीं? श्रद्धा का आविष्कार, श्रद्धा का आवेश, और उसी श्रद्धा के आवेश का परिणाम है पिता के वचन के प्रति कितनी, शास्त्र के प्रति कितनी श्रद्धा, और ये तत्परता में बदल गई। ये अनुकरण बना, पिता के आदेश जीवन का अनुकरण बना, तत्परता से अनुकरण बना, ये तत्परता। और अब यहां आचार्य यम के महल में बैठे हैं, और वहां अब तीसरा क्रमांक आया इंद्रिय संयम। अब वहां नाच गाना खाना पीना ये सारी चीजें थी, लेकिन बालक नचिकेता ने किसी का भी उपयोग नहीं किया। मैं आपको पूछता हूं, तीसरो रात्रि यद अवात्सिर गृहे में, आगे बोलेंगे आचार्यम, वहां तीन रात्रियां अनशनन ब्रह्मन अतिथिर नमस्यः, वहां अनशनन शब्द का अर्थ केवल बिना खाए पे, ऐसा अर्थ मत कीजिएगा। वहां अनशनन शब्द का अर्थ कीजिए बिना खाए पिए, बिना सोए और बिना नाच गाने का आनंद लिए हुए, ये सारी चीजें आप जोड़ दीजिए। अब वहां पर गाना गीत संगीत नृत्य भी चल रहा था, वहां जलपान आया भोजन, ये सारी सामग्री है। बोले नहीं, कुछ नहीं लेना है, क्योंकि कर्तव्य क्या है, पिता ने खाने पीने के लिए नहीं भेजा यहां, पिता ने यहां नाच गाना देखने के लिए नहीं भेजा है, और न सोने के लिए, किस लिए भेजा? अब वो जाने, पहले कहा था किंस्वित यमस्य कर्तव्यम तन मयाद्य करिष्यति। अब वो यम के पास पहुंचना, वहां पहुंचना ही कर्तव्य है, बाकी कोई कर्तव्य नहीं है, न तो अटक गए। आज्ञा थी वहां पहुंचना और खाने पीने में लग गए। ये इंद्रिय संयम, और यहाँ सोने पर भी संयम है, खाने पर भी संयम है, नाच गाना देखने पर भी संयम है, पूर्ण संयम। और एक दो नहीं तीन दिन तक, तीन रात्रि तक। इसका एक और एक कारण है कि बालक निचिकेता बहुत गूढ़ गंभीर शास्त्रों के रहस्यों को जानते हैं। आप जिसको दान बोलते हैं ना, दान का मतलब क्या होता है? आप जब किसी को दान दे देते हैं तो उसके ऊपर फिर आपका अधिकार नहीं रह जाता है, उस पर दाता का अधिकार नहीं रहता है, वहां जो लेने वाला होता है ना उसका अधिकार हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? वहां ग्रहिता का अधिकार हो जाए। आपने 10 रुपए पंडित जी को दिए, अब उस 10 रुपए के ऊपर आपका अधिकार है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, अब आपका नाम उससे हट गया, अब ग्रहिता का नाम उसके ऊपर आ गया, स्वत्व स्वामित्व तो उसका निर्मित हो गया। दूसरे के स्वामित्व को, स्वत्व को निर्मित करना ही दान है और कुछ नहीं है। आपने जो भी चीज दान दी, अब वहां आपका स्वामित्व नहीं है, वहां स्टैंप आपका अब अलग हो गया, अब दूसरे का स्वत्व निर्मित हो गया, वहां कोई अधिकार नहीं, अब आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। और दान दी हुई वस्तु का आप उपयोग कर रहे हैं तो वो दान दान नहीं है, वह अपराध है, आप निषिद्ध कर्म कर रहे हैं, आप वहां चोरी कर रहे हैं, दूसरे की चीज को आप ग्रहण कर रहे हैं। आज बालक नचिकेता ने दान किया है, हाँ दान तो पिता ने किया है, किसका दान किया है? दान किसने किया? पिता ने। और उस दान को करने की प्रेरणा किसने दी? बालक नचिकेता ने। मैंने आपको कहा था ना, दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है? आपके सामने बहुत सारे दान है, भूदान, स्वर्ण दान, अन्न दान, ज्ञान दान, बहुत सारे, लेकिन सबसे बड़ा जो दान है ना वो कौन सा दान है? स्वयं का दान है। और जितना बड़ा निराशक्त व्यक्ति होगा उतना बड़ा दानी होगा। धन के प्रति आसक्ति होगी तो आप दान कहां से करोगे? आप भूमि के प्रति आसक्ति होगी तब भी आप दान नहीं करोगे। बालक नचिकेता ने कहा मुझे किसको दान कर रहे हैं, स्वदान की बात बोली। और वो बालक नचिकेता का दान हो गया, बालक नचिकेता का दान हो गया है। किसको? ग्रहिता को, ने आचार्य यम। और इस रहस्य को जानते बालक नचिकेता। अब इसके ऊपर, नचिकेता के ऊपर न मेरे पिता का अधिकार है और न मेरा। अब यहां मेरा रहा कहां? अब मैं किसका हो गया? अरे यम का हो गया, यम का। और अब मैं यदि यहां भोजन करता हूं तो भोजन करना इसका उपयोग करना है, इस जीवन का उपयोग करना, नचिकेता का उपयोग करना। यदि मैं भोजन करता हूं, मैं यदि जलपान करता हूं तो नचिकेता का उपयोग करना है, ये मेरा उपयोग करना है। और वो दूसरे की वस्तु का मैं उपयोग कैसे करूं? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो उस समय कष्ट भी तो हो रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन संकल्प होना तो कष्ट नहीं होता आदमी को, सहजता। आप स्वीकृति देते हैं ना, अस्वीकृति का ही दुख है, सबसे बड़ा दुख अस्वीकृति का। आप एकादशी का व्रत करो, आपको भूख नहीं लगेगी, लगेगी। और आपकी द्वादशी है और मजबूरी में आपको भोजन न मिले या लेट हो जाए तो हाय हाय, अरे अभी एकादशी कर रहे थे भैया, कल कुछ नहीं खा, निर्जला, कुछ लगा, कुछ कष्ट हुआ? हाँ, बहुत सारे भोजन बन रहे थे घर में, लेकिन थोड़ी इच्छा हुई क्या? संकल्प था, वहां स्वीकृति थी, भूख की स्वीकृति थी, अनशनन की स्वीकृति थी। और द्वादशी का दिन आया तो आप 10 भी नहीं बजने दोगे, भैया जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, क्या है? वहां स्वीकृति नहीं, वहां नहीं खाने की स्वीकृति नहीं है, इसलिए आप 10 भी बजेंगे तो आपको लगेगा बहुत लंबा, बहुत लेट हो गया। अरे 11 बज गए भाई, 12 बज गए, आपकी अस्वीकृति का दुख है। इसलिए नारायण, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जो दुख है ना वो अस्वीकृति का है, हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, हम किसी भी चीज को स्वीकार नहीं कर पाते, हम परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। दुख आया और उसको आप स्वीकार कर लो, आपके घर में कोई विपरीत परिस्थितियां, आप उसको स्वीकार कर लेना। और आप जैसे स्वीकार करें ना तो आधा से ज्यादा दुख तो मेंटली दुख तो आपका खत्म ही हो जाएगा। एहसास है, ये भूख जो है ना जबरदस्त एहसास है, अस्वीकृति का एहसास। और बालक नचिकेता हंसते हंसते, अब यहां ध्यान देना, सोना भी तो जीवन का उपयोग करना है। जैसे नाच गाना सुनना, आनंद मनाना, ये भी उसका उपयोग करना है। सोना भी जीवन का उपयोग है, सोने में आनंद आता है कि नहीं? अरे सबसे ज्यादा आनंद तो सोने में है। सोने में माने गोल्डन में नहीं है, गोल्ड गोल्ड उसमें भी होगा लोगों का आनंद। आपके सोने में आपको आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। और यहां बालक नचिकेता सोचते सोना भी एक जीवन का उपयोग करना है और इस जीवन के ऊपर मेरा अधिकार नहीं, इसलिए न बिना खाए बिना सोए बिना वह आनंद का अनुभव के अनशनन। हाँ, आप वहां तीन दिन तक वहां बैठे रहे, अतिथि अतिथि है। और अतिथि का मतलब समझते हैं ना, न तिथि इति अतिथि, माने बिना सूचना दी, बिना तारीख, बिना समय बताए, जो पहुंचना है ना वही अतिथि। और तीन दिन के बाद आचार्य यम घर पहुंचे, और घर पहुंचने के बाद उनको मालूम पड़ा कि कोई बालक है बड़ा तेजस्वी, और वो तेजस्वी बालक पृथ्वीलोक से आया हुआ है, बिना खाए बिना पिए बिना सोए, और वो केवल बैठा है आपके द्वार पर, और वहां कोई गद्दी नहीं कुर्सी कुछ नहीं, जहां जगह मिली वहीं बैठ गए, और वो प्रतीक्षा में है, आचार्य यम की प्रतीक्षा में। उन्होंने सुना तीन दिन तक बिना खाए पे, ओ ऐसा इतना बड़ा लंबा चौड़ा अनशन, और वो भी अतिथि, घबरा गए, आचार्य यम भी घबरा गए। और वहां पहुंच गए, और पहुंच करके नारायण, उन्होंने एक बड़ा सुंदर श्लोक बोला है, उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण वैश्वा नरह प्रविशति अतिथिर ब्राह्मणो ग्रहान। उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण, ये वैश्वानर अग्नि है, वैश्वानर अग्नि है, और अतिथि के रूप में बिना खाए पिए या हमारे द्वार पर खड़ा है। कस्य तम शांतिम कुर्वंती हर वैवस्वतो दकम, अपनी पत्नी को बोला, अरे क्या देख रही हो, ले आओ जल, ले आओ जल, इसको शांत करना है, अग्नि है अग्नि है, आप इसकी शांति करना है। वहां वैश्वानर शब्द का प्रयोग किया है, वैश्वानर ब्राह्मणो ग्रहान अतिथि, वह अग्नि का स्वरूप बताया है नारायण, अग्नि है ना अग्नि, आप अग्नि को अग्नि इसीलिए बोलते हैं, अग्नि जलाती भी नहीं, अग्नि आप जब छू देते हैं ना तो वो जला भी देती है, जहां अग्नि प्रवेश करती है वहां जला भी देती है। और अग्नि का अर्थ होता है अग्रे नयति इति अग्नि, आप जो भी देते हैं ना वो क्या करती है, आगे ले जाती है। आप इंद्राय स्वाहा, आप क्या करते हैं, आप यज्ञ करते हैं, और यज्ञ में इंद्र के लिए आप हवन कर देते हैं, आप हवन करते तो कहां पड़ता है, वो आहुति पड़ती है अग्नि में, और पहुंच कहां जाती है, वो ले जाते हैं, आपकी भावना आपका समर्पण वो परमात्मा तक पहुंचा देती है, और इसीलिए उसका नाम क्या है, अग्नि। इसलिए यहां उपमा दी, वैश्वानर अग्नि ही आयम ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण है अतिथि है ये वैश्वानर अग्नि की तरह है, आप उसकी पूजा करेंगे वो पूजा कहां पहुंच जाती है, भगवान को। आप उनको दान करते हैं वो दान कहां पहुंचता है, भगवान को। आपको ऐसा लगता है वो माध्यम है, वो व्यक्ति नहीं है, वो अव्यक्त परमात्मा का द्वार है, द्वार है। आप भगवान तक पहुंचना चाहते तो आपके पास तो दरवाजा तो चाहिए ना जाने का, आपके पास सीढ़ी तो चाहिए, माध्यम तो चाहिए, और वो परमात्मा का द्वार है। आप जो भी वहां समर्पण करते हैं ना वो आपको परमात्मा तक पहुंचा देता है, इसलिए अग्नि है। और यदि आपने वह अपमान किया, वहां तिरस्कार आपने किया, तो किसका तिरस्कार किया, वहां भगवान का तिरस्कार हुआ, इसलिए यहां घबरा गए आचार्य यम भी घबरा गए। अतिथि के रूप में एक ब्राह्मण यहां द्वार पर, और तीन दिन तक भूखा प्यासा, सोचते इतना बड़ा अपराध हुआ, ये तो अग्नि स्वरूप है, और ये कहीं मेरे यमलोक को जल करके खाक न कर दे। हाँ, यही ये कहने का तात्पर्य यही है, वैश्वानर अतिथिर ब्राह्मणो ग्रहान वैश्वानर प्रविश्यति। और यहाँ अग्नि सामान्य अग्नि का प्रयोग नहीं, वैश्वानर अग्नि माने विराट अग्नि है। हा? आप इस दुनिया के किसी अग्नि को आप बुझा भी सकते हैं, सामान्य अग्नि उसको आप बुझा भी सकते हैं, लेकिन ये जो अग्नि है ना ब्राह्मण, ये अतिथि रूप में आया हुआ और उसमें भी अतिथि रूप में आया हुआ है। हा? और ये तीन दिन तक भूखा, अब ये सामान्य अग्नि नहीं रहा, ये तो वैश्वानर अग्नि बन गया है। अब इसकी शांति का एक ही उपाय है, कस्य एतम शांतिम कुर्वन्ति है ना, हर आहर वैवस्वतोदकम। अब थोड़ा जल ले आओ, इसके पैर धो लेते हैं हम। पाद्य और अर्घ्य हमारे यहाँ की परंपरा है, हाथ पैर धुलाना। हाँ, पाद्य माने पैर धुलाना, अर्घ्य माने हाथ धुलाना। आपके द्वार पर जब कोई अतिथि आए तो सबसे पहले स्वागत यही होता है। इन्होंने फिर जल मंगवाया, स्वयं हाँ, स्वयं अपने हाथों से वहां ब्राह्मण देवता नचिकेता के चरण धोए, पत्नी ने जल डाला, उन्होंने स्वयं पैर धोए। और उसके बाद फिर एक बड़ा सुंदर श्लोक बोला है, उसके ऊपर कल आपको बताएंगे। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम च, बड़ा सुंदर श्लोक है ये कठोपनिषद, सचमुच बड़ा सुंदर उपनिषद है। और ये नचिकेता की जो आख्यायिका है ना, आप जितना विचार करो इस पर कम है। आप जो आप इससे प्रेरणा लेना चाहते हैं वो सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए आप एक माला जप करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे। हरि ओम तत्स, हरि ओम तत्स, हरि ओम तत्स।